أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سب سے پہلے وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، علماء کرام، اساتذہ، مہمانان گرامی اور طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے سعادت مندی ہے کہ جس شخصیت، جس ذات والا صفات نے انسانیت کو معراج عطا فرمائی اور انسانی اقدار اور تہذیب کو اتنی مضبوطی دے دی کہ اب قیامت تک جب کبھی ہمیں اقدار اور تہذیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اسی ذات کا ذکر شروع کر دیں گے کہ جس نے تہذیب اور اقدار کو پروان چڑھایا. آپ نے اپنے نانا کے دین کو، اپنے نانا پہ آنے والی شریعت کو، وہ حیات نو اور تجدید حیات سے نوازا کہ اب ان کا ذکر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کا مصداق بنے گا. بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، ہر سال دہراؤ، ہر عنوان پر دہراؤ، ہر موقع پہ دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے، ہم جس دنیا میں آئے ہیں، پہلے تو یہ کہ یہ دنیا ہے اور عظیم ترین شخصیات میری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے. سب سے بڑی عظمت تو سرکار دو جہاں کی ہے کہ جنہیں اللہ نے وہاں سے یہاں بھیجا. سرکار کی ایک معراج تو رسمی ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، مگر بزرگان دین لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ معراجیں حضرت نے زمین سے اور سدرۃ المنتہی تک آپ کو لے جایا گیا، 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ. بزرگان اہل سنت بھی 80 سے زیادہ معراجوں کے قائل ہیں اور بعض بزرگان 100 سے زیادہ کے معراجوں کے قائل ہیں، لیکن ایک معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے. وہ ظاہر ہے ایک ہی معراج کا ذکر قرآن میں آنا تھا تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کا عنوان ہے، جس پہ علامہ ذیشان درجہ وادی تو بڑا حسین جملہ کہتے ہیں، دو مصرے ان کے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. تو اس ہستی پر جو اللہ نے جو مصیبتیں اور جو مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑا، جس پہ آپ نے فرمایا ما اودیا نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچیں جتنی مجھ مصطفیٰ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. اور جسے انیس کہتے ہیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جب تقاضا بشری کے تحت وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. مگر اصل جو عنوان ہے وہ یہ کہ ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان الجھنوں میں انسان کیسے اپنے آپ کو لے کر چلے، کیا کرے کہ ان مصیبتوں کا سامنا بھی ہو جائے اور انسان کامیاب شمار کیا جائے. یہ ہمیں سرکار کی زندگی سے بخوبی ملتا ہے اور ان کے گھرانے نے ہمیں نبی کی امنگوں اور نبی کی آرزوؤں اور نبی کی پسند کے مطابق ان کے گھرانے نے ہمیں یہ کر دکھایا. لہذا قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کی 155 آیت، اور میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں 156 آیت، ان دونوں آیتوں میں اللہ یہی ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالتَّحْقِيقِ، تین تین تاکیدیں ہیں اس میں، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، کم کی ضمیر بھی ہے مخاطب کی. हम मदरसे में पढ़ते हैं कि ये इस अंदाज से अल्लाह ने बि तहकीक बि जरूर लाजमन ये होगा, यानी तीन तीन दफा बाकायदा होशियार करके बताया है कि ये होगा। तुम्हें दुनिया में भेजा है, दुनिया मुश्किलात की जगह है, दुनिया परेशानियों की जगह है। एक साहब एक पीर साहब के पास गए, कहा हुजूर फला परेशानी है कोई दुआ बता दीजिए। उन्होंने दुआ बता दी। कहा हुजूर फला परेशानी भी है दुआ बता दीजिए। उन्होंने दुआ भी बता दी। कहा हुजूर सर में दर्द भी रहता है, कहने लगे ये जिक्र कर लिया करो। हुजूर मेरे बच्चे की टांग में दर्द है, कहा ये जिक्र कर लिया करो। जब आठ दस दफा उन्होंने ये परेशानियां बताई तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा ये दुनिया है, यहां परेशान ही रहना है भाई। जहां तुम्हें आसाइश मिलेगी, जहां तुम्हें आराम मिलेगा, वो तो आखिरत है। तुम दुनिया में इतना अपने आप को अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजार कर दिखाओ कि फिर आखिरत तुम्हारी सुकून से गुजरे, फिर उस जहान में तुम्हें आसानियां हो जाएं। तो ये दुनिया, खुद लफ्ज दुनिया खुद हमें बता रही है दनी की मुअन्नस है। दनी मुजक्कर है, यानी पस्त मुजक्कर, और पस्त मुअन्नस को कहते हैं दुनिया, यानी इतनी गिरी हुई एक मोनस, एक औरत। औरत मुझे माफ कीजिएगा, लफ्ज मैंने सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कहा है। एक मोनस वजूद के जो पस्तरीन है, दनी की जिद है अली। तभी शायद मौलाए कायनात ने दुनिया के लिए कहा मैंने तुझे तीन तलाकें दे दी हैं, तुझे हक रुजू भी नहीं है अब मुझसे। नहजुल बलागा में मौला अली का फरमान। तो ये दुनिया वैसे ही पस्त जगह है, यहां हमें गुजारना है वक्त, मगर गुजारना इस अंदाज से है कि ये भी नहीं पता कि 80 साल गुजरेंगे, और ये भी नहीं पता कि आइंदा सांस भी आएगा या नहीं आएगा। इस कैफियत में हमें अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए, अपनी सलाहियतों को महसूस करते हुए हमें ये वक्त गुजारना है। और इस दुनिया में हमें आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मसाइब और मुश्किलात हमेशा तीर के लग जाने की जो तकलीफ होती है वो नहीं होते, प्यास की तकलीफ हमेशा नहीं होती। कुरान मजीद ने ये पांच चीजें बयान कर दी कि हम तुम्हें इन पांच चीजों में से किसी एक चीज से आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशयइन बिशयइन बिशयइन, जो अरबी अदब के लोग बैठे हुए हैं, कुछ उलमाए किराम में महसूस कर रहा हूं, तशरीफ फरमाए। बिशयइन कुछ आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ, खौफ डर तारी होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर खौफ की हुकूमत आ जाएगी। खौफ, जू, भूख, नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व थमरात, ये पांच चीजों से हम तुम्हें आजमाएंगे। कोई दो चीजों से आजमाया जाता है, कोई तीन चीजों से आजमाया जाता है, कोई एक चीज से ही आजमाया जाता है, मगर ये जरूर होना है कि हमें आजमाया जाएगा। बशर साबरीन, बशारत दे दीजिए मेरे हबीब साबरीन को। साबिर कौन है? साबिर इस्तकामत करने वाले को कहा जाता है, साबिर मैदान न छोड़ने वाले को कहा जाता है, साबिर बहादुर को कहा जाता है, साबिर जवान को कहा जाता है, साबिर तालिब इल्म को कहा जाता है। तालिब इल्म साबिर है अपनी तालीमी दौर के अंदर, वो मुकम्मल तालीम हासिल करे, वो बेहतर तालीम हासिल करे, अपने निजाम तालीम से सच्चा रहे। उसका कोई काम नहीं है निजाम तालीम में, दौरान तालीम में, सिवाय इसके कि वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करे। लिहाजा मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जब एक जवान को देखा तो हजरत ने सवाल किया तुम करते क्या हो? उसने कहा हुजूर मैं कुछ नहीं करता। हजरत ने फरमाया मुझे उस जवान से नफरत है जो जवान हो और कुछ ना करता हो। लिहाजा जवान ने अगर एक कोर्स मुकम्मल कर लिया, एक निसाब मुकम्मल कर लिया, ढूंढे कि मैं कहां और ज्यादा बेहतर पढ़ सकता हूं, इससे आगे मुझे तालीम क्या हासिल करनी चाहिए। फारिग रहने वाला, बेकार रहने वाला जवान नबी के घराने को पसंद नहीं है। मेरी और आपकी कोई तालीम की के सिनो साल नहीं होते, हम बुढ़ापे में भी तालीम हासिल कर सकते हैं, मगर जवानी जवानी है, जवानी दीवानी नहीं है। जवानी अगर मारिफत के साथ हो तो अली अकबर अलैहिस्सलाम बनता है, जवानी अगर मारिफत के साथ हो तो हजरत कासिम जैसा वजूद सामने आता है, जवानी अगर मारिफत के साथ हो तो ला फता इल्ला अली का नारा जबरील बुलंद करता है। एक ऐसा जवान के आवाज आ रही है ला फता, कोई जवान ही नहीं है सिवाय अली के। इसका मतलब यह है कि अगर जवान अपनी जवानियों को अली के साथ जोड़ दें तो वो भी जवान बन सकते हैं। अली की जवानी कैसी है, इस घराने की जवानी कैसी है? मेरे मोहतरम सुनने वालों, जो अक्सरियत में जवानों पर यह मजमा मुश्तमिल है, मैं आपसे यही कहूंगा कि सब्र यह है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपनी आरजुएं, अपनी जो बहुत सारी महसूस होता है कि यह भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, उसे मौखर कर दें जब बेहतर तालीम हासिल हो जाए। अलबत्ता यह हरगिज मुराद नहीं है कि और इबादात से और फराइज से इंसान गाफिल हो जाए। बैलेंस करके चलना है, मोतदिल जिंदगी गुजारनी है, एतदाल के साथ जिंदगी गुजारनी है, और हमें इस घराने से सबक लेना है कि सब्र कैसे किया जाता है, इस्तकामत का मुजाहरा कैसे किया जाता है। एक फरमान में मुझे मौला अली का याद आ रहा है, हजरत फरमाते हैं, क़द क़दमैक तदूलुल जिबाल वला तदल उन्दुर इला अक्सल कौम, जवानों से खिताब है मौला अली का, फरमाया जब मैदान में उतरो तो अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि तुम्हारे सामने से पहाड़ हट जाए मगर तुम ना हटने पाओ। तुम सामने वाले को हटाओगे जो तुम्हारी राह में रुकावट बन रहा है, लेकिन तुम मैदान छोड़कर नहीं जाओगे। यह तुम्हारी जवानी का एक असल उसूल है। कैद कदम एक, अपने दोनों पैरों को जमीन में गाड़ लो, तदोल जिबाल वाला तदल, जिबाल हट जाए, जबल हट जाए मगर तुम ना हटने पाओ। उन दो अक्सल कौम, अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पर रखना जिनकी निगाहें सतही होती हैं, कोता होती हैं, छोटी होती हैं, आर्जी होती हैं, वक्ती होती हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाते, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। ऊंचा सोचिए, आपको एक पीएचडी नहीं करनी, आपको कई कई शोबों में, कई कई तालीमी उनवानों में अपने आप को माहिर बनाना है, मुसलसल पढ़ना है, मुसलसल पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है, और मैदान छोड़कर नहीं जाना। एक दफा पेपर में नंबर कम आए रिपीट करें, एक दफा रह गए दोबारा पढ़ेंगे जी। अगर अल्लाह ने सालाइया ज्यादा दिया जंप कीजिए, एक साल में दो दो क्लासें ले लीजिए, लेकिन मैदान छोड़ के जाना और मैदान से फरार इख्तियार कर लेना, ये मौला अली नहीं पसंद फरमा रहे किसी जवान को। उन्दुर इला अक्सल कौम, अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पे रखो, अपनी फिक्र ऊंची करो, अपनी सोच ऊंची करो, ये फिक्र ऊंची करो और सोच ऊंची करो। अजीजाने ग्रामी, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। मौलाना नूरानी साहब अहले सुन्नत से हैं, और अलग अहले सुन्नत बच्चे भी यहां बैठे हुए हैं, असातिज़ा भी यहां होंगे। मैं अपने आप को शिया कहता हूं, यह कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, 1400 साल पुराने मजाहिब हैं। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज होती हैं, ऐसे इस्लाम की फैकल्टियों के नामों में से एक नाम मालिकी है, एक शाफई है, एक हम्बली है, एक जाफरी है, कोई बरेलवी है, कोई सल्फी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है, कोई तफजीली है। ये सारे उनवानात हैं, हर एक की तहकीक है, हर एक ने अपने अपने मौजू के ऊपर काम किया है। ना ये सब मिलकर मुझ शिया को ख़त्म कर सकते हैं, ना हम सारे शिया मिलके सुन्नियों को ख़त्म कर सकते हैं। ये काम होने वाला नहीं है, ये काम फजूल है। हमें मुश्तरकात की तरफ आना होगा, हमें इत्तफाकात की तरफ आना होगा। अगर किसी चीज़ को आप मुश्तरक बनाना चाहते हैं तो आपको वो पैगाम पहुँचाना होगा। काउंसलिंग के बगैर कुढ़ना और जलना कोई फ़ायदा नहीं है। हम उस वक्त जलें कुढ़ें कि जब हमने मेहनत कर ली हो और अपनी बात पहुँचा दी हो, और पहुंच भी गई हो और फिर भी कोई जिद्दियत पर उतर हुआ हो, तब जलना और कोढ़ना बनता है। लेकिन जब तक मैंने अपनी बात पहुंचाई नहीं है, मैंने अब समझाया नहीं है, हम तो मुलाकात के रवादार नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबका सलाम भी हुए पहुंचाऊंगा मौलाना तारिक जमील साहब को। कल भी रात मेरी उनसे बात हुई, वो मुल्क में नहीं है तबीयत की खराबी की वजह से। मुझे भी मुसलसल 3 दिन से बुखार है और मेरे आपको देख कर ज़रा सा ताज़ा हो गया हूँ। जवानों को देख के थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है, तो लोग रवादार नहीं थे मुलाकातों के हवाले से, बैठने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले तशरी जिंदाबाद, इन्होंने मिलकर मेहनत की है और एक दूसरे से करीब हुए हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो सरकारी फोरम हो या मिल्ली यकजहती कौंसिल वो अवामी फोरम हो, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नूरानी साहब, मौलाना जाफर सुबहानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, ये सब उन फोरमों के ऊपर जाके बैठते हैं और हमारे दरमियान मुश्तरकात जो कौमी और मुश्तरका मफादात हैं, जो हमारे मुल्की मफादात हैं, जिसमें हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, उस हवाले से ये किरदार अदा कर रहे हैं और हम भी एक छोटे से कारकुन के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अजीज़ाने ग्रामी, हमें आजमाइशों का सामना है, वो आजमाइशें तालीमी दुनिया की हूँ, मैं भी दर्द दिल सुन रहा था वाइस चांसलर साहब का, और उनसे भी दर्द दिल कर रहा था। जो मसाइल हैं, जो तालीमी इदारों में कमियाँ, कास्तियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं या ना कह दूँ ना अहलियाँ हैं, उन्हें बरतरफ करने की ज़रूरत है। बड़े फोरमों पर बात करने की ज़रूरत है। कराची यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि और यूनिवर्सिटियों में जो मसाइल हैं उनको भी उसकी निशानदही पहले मरहले पे, दूसरे मरहले पे उनके हल की तरफ जाने की बात हो, और बात भी उनसे हो जो जिनके हाथ में हल करना है, यानी जिन जो साहिबान इख्तियार और इख्तदार लोग हैं। लेकिन तालीम से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। आप इस गुत्थी को सुलझा दीजिए, सारे मसले खुद हल हो जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर लेने जाते हैं, हम कहीं खिताब कर रहे होते हैं, कहीं मीलाद में या किसी मजलिस में या किसी जुमे के खुतबे में या मसलन अपने रोज़ाना की मुलाकातों में, तो ये क्लास ही हो रही होती है। और जब कभी टीचर अच्छा ना हो और तालीम अच्छी ना हो तो इदारा बंद नहीं किया जाता, टीचर तब्दील किया जाता है, पढ़ाने वालों को बेहतर ढूंढा जाता है। और वो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पहले की नस्बत बेहतरी की तरफ है। खुद कुछ वक्त ने हमारी तरबियत की है, ज़माना खुद मुअल्लिम है, वक्त क्योंकि खुद मुअल्लिम है, उस्ताद है, वक्त सिखाता है बहुत सारी चीज़ें। कुछ सोशल मीडिया की भी मेहरबानियाँ हैं जो उन्होंने बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारी, हमें घर घर तक पहुँचा दिया, एक दूसरे को एक दूसरे तक पहुँचा दिया। मजमूई तौर पर हमें आजमाइशों का सामना है, और आजमाइशों से निकलने का सबसे अच्छा नुस्खा करबला वालों ने हमें अता किया है। करबला वालों को अल्लाह ने पाँचों आजमाइशों में एक वक्त में आजमाया है, पाँचों आजमाइशों में मुबतला किया अल्लाह ने। खौफ भी है, भूख भी है, नक्स अमवाल भी है, अनफुस भी है, और समरात भी, औलाद भी मर रही है, जाने भी जा रही हैं, भूख और प्यास भी है, खौफ भी है। खौफ अलबत्ता वो कुरान की आयत अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहदनून यहाँ नहीं बैठेगी बात। हमें पूरा कुरान पढ़ना होगा तब जाके हमें ये जो उलझने कभी कभी आती हैं इल्मी तौर पे वो हल होंगी। पूरा कुरान पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये आयत इस आयत के साथ नहीं जुड़ेगी, ये आयत फला आयत के साथ जुड़ेगी। यहाँ पर जो कहा गया है कि मैं आजमाऊंगा साबिरों को, बशारत दे दें, जो साबिर है, जो साहिबान बशारत हैं, वो अल्लाह के औलिया तो हैं ना, वही तो अल्लाह के औलिया हैं। लेकिन एक और जगह कहा गया कि अला अन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के औलिया जो हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहदनून। वो खौफ कौन सा है जो औलिया इलाही को नहीं आता, और ये खौफ कौन सा है जो हुसैन को करबला में आ रहा था, या साबरीन को करबला में आया, या साबरीन को अपनी जिंदगियों में आ सकता है जिन्हें जन्नत की बशारत भी दी जा रही है। वो खौफ और है, ये खौफ और है। वो खौफ जो हज़रत मूसा को आया था, कुरान मजीद में हज़रत मूसा के लिए भी लफ्ज़ खौफ आया है। वो खौफ हज़रत मूसा जैसे ये वाला खौफ जो हमें खौफ होता है नहीं, यहाँ खौफ उम्मत की गुमराही का खौफ, उम्मत के जहन्नम में जाने का खौफ, उम्मत के बातिल नज़रिए पे चलने का खौफ। खौफ हमेशा मैं अपनी ज़ात से मुतालिक खाऊँ तो वो खौफ नहीं होता, किसी और की बेहतरी के बारे में, किसी और की परेशानी के बारे में जो खौफ है वो भी तो मुझे ही हो रहा है, वो भी तो आपको हो रहा है। जिसे कुरान मजीद नबी मुकर्रम की सिफात के तौर पे बयान करता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम। नबी मुकर्रम जो परेशान रहते थे वो अपनी परेशानियों में परेशान तो माज़ल्ला नहीं थे, वो उम्मत की परेशानियों में परेशान थे। जो कुरान कह रहा है कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, मेरा नबी तुम्हारी परेशानियों में परेशान रहता है, ये वाला खौफ। लिहाजा एक रावी कहता है जो यजीदी लश्कर का सिपाही था, ये बात भी आपके जहन में है कि करबला के वाक़ियात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मदीना पहुंचकर बयान फरमाया, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने पहुंचकर बयान फरमाया कि हमने करबला में क्या देखा। और करबला के बाद दोस्त हमारे सवाल करते हैं कि साहब इतनी जुज़ियात आपको कैसे पता, आप जब मसाइब मख्तल पढ़ते हैं तो इतनी ज़ेली बातें कि हज़रत इमाम हुसैन ने जब हज़रत अली अकबर के कलेजे से बर्शी निकाली तो क्या फरमा रहे थे, या हज़रत इमाम हुसैन के गले गुलवे मुबारक पर जब खंजर चल रहा था तो क्या ज़बान उनसे क्या जुमले उनके अदा हो रहे थे, ये इतनी ज़ेली बात आपको कैसे पता चल गई। तो किस्सा कुछ यूँ है कि जब मुख्तार सकफ़ी ने कातिलान इमाम हुसैन को गिरफ़्तार करना शुरू किया तो उस वक्त तक वो सज़ा नहीं देता था जब तक कि पूरी दास्तान उससे सुनता नहीं था, बताओ क्या देखा, बताओ क्या किया। तो मुजरिम का इकरार जो होता है ना अदालतों में वो काफ़ी होता है, मुजरिम कह रहा है मैंने किया ये काम, मुजरिम कह रहा है मैंने ऐसा किया था, तो वो रिवायत बनी, वो मक्तल बना, वो तारीख का हिस्सा बना। ज़्यादातर वाक़ियात करबला मुजरिमों का इकरार है कि हमने ये किया, हमने ऐसा देखा, ये ज़िमनन बात आ गई। एक रावी है, एक सिपाही है, यजीदी लश्कर का सिपाही है, वो कहता है मैंने देखा करबला में हुसैन ने 10 लोगों को मारते मारते छोड़ दिया। तलवार हुसैन इब्ने अली की उसकी गर्दन तक आ गई थी जब आखिरी वक्त में अपना दिफा कर रहे थे मौला, और बिल्कुल मार सकते थे मगर हुसैन ने तलवार हटा ली और उसे भागने का मौका दिया। तो कहता है मैं अपना घोड़ा लेके हुसैन के घोड़े के सामने आ गया, मैंने आवाज लगा के कहा कि मैं आपको देख रहा हूं, क्या आपने इतने लोगों को कसदन छोड़ दिया, आप मार सकते थे आपने नहीं मारा। तो हुसैन इब्ने अली ने आवाज देकर कहा मैं इसमें हिदायत की नूरानियत और चिंगारी देख रहा था, यह आगे जाके ठीक हो सकता है, यह जहन्नुम में नहीं जाएगा, इसके अंदर कुछ नूर की चिंगारी मौजूद है, यानी इस हद तक ये हमें हिदायत याफ्ता देखना चाहते हैं, हमें अच्छा इंसान देखना चाहते हैं, हमें अच्छा बशर देखना चाहते हैं। इस घराने का पैगाम, इस खानवादा मुस्तफ़ा का पैगाम ही यह है कि तुम आजमाइशों का सामना करो, वक्त को अपनी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारो, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। अद्दहरो यौमान यौमुन लका व यौमुन अलैका, जमाना दो दिन ही का तो है, एक दिन तुम्हारे खिलाफ रहेगा, एक दिन तुम्हारे हक में रहेगा। तुम जो दिन खिलाफ आया है, तुम्हारी मुखालिफत में आया है, उसे गुजार दो, उसे अच्छे अंदाज से गुजार दो। कल अच्छा है, मुस्तकबिल अच्छा है, कल उन्हीं का है कि जो इन उसूलों पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह हमें बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने, उस पर अमल करने, मुल्क की खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस इदारे को, जामिया कराची को, वाइस चांसलर साहब के ज़माने में ही बहुत सारी तरक्कियां अता फरमाए, ताकि इनकी जो खिदमात हैं वो ये जामिया ले सके। असातिज़ा, तालिब इल्म, जितने भी अहबाब यहाँ मुतालिक और मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब को बतफ़ैल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पाक औलाद, आपके असहाब मुंतजबीन और क़ुरबानी देने वाली शख्सियात जिन्होंने तारीख़ में अपनी जान, शहदाए बद्र, शहदाए उहद और शख्सियात ख़ास तौर पर शहदाए करबला के सदक़े में हमें सुरखरू फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।